समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपनी न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। कार्यक्रम परिक्रमा में आज मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा।
नमस्कार वैष्णवी, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू टुडेज परिक्रमा। इट्स सैड एंड पेनफुल वैष्णवी टू रीड अबाउट द ऑनगोइंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड दीस डेज। दो ग्लोबली द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वॉर डेथ्स हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस 1946, येट कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस आर करेंटली ऑन द राइज। Technological advances are contributing to the changing nature of the conflict, and there are concerns about the potential for artificial intelligence and machine learning to enhance cyber, physical and biological attacks as well.
Gee.
World peace is the urgent need of the hour to prevent mass destruction, human suffering and the environmental damage caused by war. It is essential for global economic stability, enabling development, fostering cultural exchange and upholding human rights. Everyone today is wishing for peace as soon as possible. It is a deeply felt hope, echoing sentiments that prioritize quiet, comfort and harmony over conflict and the restoration of normal, safe lives. This aspiration often emphasizes that while we wait for greater global stability, we can cultivate peace within ourselves and pray for everyone's well-being. Isn't it, Vaishnavi?
Ji, bilkul.
And now, shall we begin with the news making headlines at this hour of the day?
जी, आज मुख्य समाचार में है, राज्यसभा में आज 20 राज्यों के 59 सांसदों को विदाई दी गई, इनमें 9 महिला सदस्य शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र में उनके स्थायी योगदान की सराहना की।
लोकसभा एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन।
सरकार ने एयरलाइंस के लिए यात्री अनुकूल नए नियम जारी किए, कम से कम 60% सीटें निशुल्क चयन के लिए आरक्षित करने और परिवार के लिए सीटों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
इंडियन टैंकर जग लाड़की डॉक्स एट गुजरात मुंद्रा पोर्ट विथ ओवर 80,000 टन्स ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम यूएई वाया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज।
पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव बढ़ने के साथ ही इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया, 6 लोग मारे गए।
IMD issues orange alert for thunderstorm and hailstorm in Chhattisgarh, Himachal Pradesh and Vidarbh today. Several parts in Ladakh receive snowfall. And as always, Vaishnavi, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about Bharat Tribes Fest. So the curtains for the Bharat Tribes Fest 2026 is soon to rise today. The Bharat Tribes Fest will showcase the cultural heritage and entrepreneurship of tribal communities. The fest is being organized by Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India at Sundar Nursery and will be inaugurated by the Union Tribal Affairs Minister Jual Oram this evening. The fest will be held till the 30th of this month.
श्रोताओं, ये उत्सव प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। इसका उद्देश्य कला, हस्तशिल्प, हथकरघा, व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आदिवासी भारत की विविध परंपराओं, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना का एक जीवंत अनुभव प्रदान करना है। यहाँ 120 प्रतिभागियों के माध्यम से वन से थाली तक व्यंजनों का अनुभव किया जा सकता है और साथ ही 17 लाइव प्रदर्शनों में पारंपरिक शिल्प देखे जा सकते हैं। शाम को 400 से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे।
Bada Tribes Fair 2026 will feature over 200 stalls representing 78 Vandhan Vikas Kendras and more than 300 tribal artisans from across the country. The festival aims to promote the creativity, sustainability and entrepreneurial potential of India's tribal communities while providing greater visibility and market opportunities for tribal artisans and enterprises.
भारत की जनजातीय कला में चित्रकला, धातु शिल्प, लकड़ी, वस्त्र और मिट्टी के बर्तन पर नक्काशी शामिल है, जो अधिकतर ग्रामीण और वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों द्वारा बनाई जाती है। इनमें आपको प्रकृति, पशु, पौराणिक कथाएं और त्योहारों से जुड़े विषय देखने को मिलेंगे।
And the curtains are rising today and it promises to be nothing short of spectacular. This festival is not just an event. It's an immersive journey into the heart of tribal India. From traditional art and handicrafts to exquisite handlooms, every corner tells a story. And let's not forget the flavors. Visitors can indulge in authentic tribal cuisine that reflects the diversity and uniqueness of indigenous communities across the country.
अनुज, इस उत्सव की खास बात यह है कि ये रचनात्मकता और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। ये आदिवासी कारीगरों को अपनी प्रतिभा दिखाने और लोगों से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करता है। चाहे आप कला प्रेमी हो, खाने के शौकीन हो या फिर भारत की संस्कृति को जानना चाहते हो, ये जगह आपके लिए उपयुक्त है।
In fact, tribal festivals serve as vibrant hubs for socio-economic empowerment, transforming a cultural heritage into sustainable livelihoods. By bringing together hundreds of artisans, performers, and entrepreneurs, these events provide a direct-to-customer, consumer marketplace for handmade handicrafts, textiles, and organic minor forest produce, effectively eliminating middlemen. They boost local economies through surging demands for traditional skills ranging from bamboo crafting to iron smithy, offering rural communities, particularly women and youth, essential income streams and also a platform for entrepreneurship.
भारत में कई तरह की कला शैलियां हैं जिन्हें GI टैग का दर्जा मिला है, जैसे बिहार की मधुबनी चित्रकला जिसमें प्राकृतिक रंगों से पौराणिक कथाएं दिखाई जाती हैं, पट्टा चित्र अपनी बारीक रेखाओं के जरिए कहानी बताने की शैली के लिए जाना जाता है, जबकि वारली चित्रकला सरल आकृतियों से रोजमर्रा की जिंदगी और प्रकृति को दर्शाती है।
GI tag products will also be shown here, and they are not just beautiful, they play a crucial role in preserving India's cultural identity. They protect traditional knowledge, ensure fair recognition for artisans, and prevent imitation or misuse of authentic regional crafts. Moreover, they support local economies by creating employment and encouraging the continuation of age-old skills.
तेजी से आधुनिक हो रही दुनिया में ये शिल्पकलाएं हमें हमारी जड़ों और हमारी विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है। इसलिए अगली बार जब आप GI टैग वाला कोई उत्पाद देखें तो याद रखें, आप सिर्फ एक वस्तु नहीं देख रहे हैं बल्कि एक कहानी, एक परंपरा और एक विरासत देख रहे हैं।
एंड ऑन द साइडलाइंस, द भारत ट्राइब्स बिजनेस कॉन्क्लेव शेड्यूल्ड फ्रॉम द 19th टू द 27th ऑफ दिस मंथ विल सर्व एज अ प्रीमियर प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स एंड ट्राइबल एंटरप्राइजेस to engage in high-level discussions on sustainable textiles, tribal food systems, and ethical luxury markets. This multi-day event will address critical themes such as innovation, the protection of indigenous knowledge, and skilling for tribal youth and women, all aimed at fostering a robust ecosystem for community-led tribal tourism and enterprise development.
श्रोताओं, इस पहल का एक अहम हिस्सा है 24 मार्च 2026 को होने वाला CSR सम्मेलन, जिसका उद्देश्य कॉरपोरेट संस्थानों और आदिवासी उद्यमियों को जोड़ना और स्थायी साझेदारी व रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
And to conclude all this, we can say that every artwork on display carried more than aesthetic value. It carried a community's way of seeing the world, its relationship with nature, its moral stories, and its memory. These are not relics. They are living, evolving traditions, and the artists who practice them have made it clear that they do not intend to let them fade. For many of them, women artists at the Bharat Tribes Fest painting is more than a profession. It is a way of safeguarding the stories of their communities.
ये महोत्सव भारत की पारंपरिक कला का एक जीवंत प्रदर्शन है। ये समावेशी विकास, संस्कृति की रक्षा और आदिवासी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है।
And as part of our series People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to Shri Gambhir Singh Yonzon, a botanist who will be honored with Padma Shri for his contribution in the field of literature and education.
I became successful in becoming the first Hillman PhD from Calcutta University in Botanical Science in 1976. I chose to come back again to Darjeeling to help out all our backward hill students. From Darjeeling Government College, in due course of time, I came over to Kalimpong College as his first Hillman principal, Kalimpong College. He could erect a library known by his name. I think that would be very helpful to the village children. We launched an environmental protection movement, forest conservation by the name of Forest Conservation Movement, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
To listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashvani Gold today in the evening at 5:10 p.m. You can also listen to it on News on EIR app and News on EIR official YouTube channel. The program will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है।
And the Chaiti Parb is a significant annual festival celebrated by the Dongariya Kandha tribe of Kalahandi district of Odisha. It's a post-harvest festival typically observed from March to April, where the Kandha people worship Niyam Raja, their supreme deity, and Dharani Penu, the earth goddess. The festival emphasizes their reliance on and respect for the forest and nature. We have more on this from our Sambalpur correspondent.
The Dongariya Kandha, a particularly vulnerable tribal group residing in the Niyamgiri Hill Range of Kalahandi and Raigada district of Odisha, are known for their deep connection with the Niyamgiri Hills, which they consider as sacred. The tribe worship Niyamgiri Hills as their supreme god Niyam Raja and the earth goddess, which they call Dharani Penu. Chaiti Parva is such an occasion to thanksgiving and offer prayers to their deity for good food and prosperity. It is considered as the most significant festival celebrated by the tribe. The festival is celebrated in the month of Chaitra, which is held in the month of March and April, coinciding with arrival of spring and following the agricultural harvest. The festival involves traditional dance, music and rituals to ensure agricultural prosperity and community bonding. It is a time of joy, community bonding and worship of nature, marking the end of one agricultural cycle and the beginning of another one. In this festival, villagers, including the Dongariya Kandha youth, indulge in traditional song, dance and merrymaking. In particular, Dhangda Dhangdi dance is the special attraction of the festival. The festival often involves community feast, traditional attire and the consumption of local rice beer. No doubt, it's an integral part of Dongariya Kandha's cultural heritage, reflecting their history, tradition and values. For Parikrama, this is Bismita Pradhan, Akashvani Sambalpur.
And we have more from Odisha, where a silent revolution is unfolding. Women and transgender groups across the state are emerging as champions of change by taking lead roles in community sanitation systems and helping create healthier, cleaner cities and towns. By managing sanitation systems and mobilizing communities at the grassroots, they are bringing the vision of the Swachh Bharat Mission closer to reality. Here is a report from Cuttack.
ACRES Odisha women and transgender groups are playing a transformative role in strengthening sanitation system through community-driven initiatives. At the heart of this change is the Mission Shakti program, which has empowered self-help groups to take on key responsibilities in the management and operation of sanitation infrastructure. Through Mission Shakti, women and transgender persons are being trained to manage sanitation systems and offered fecal sludge treatment plants, helping to bridge the shortage of skilled labor in sanitation services. More than 100 such treatment plants across Odisha are now operated by self-help groups, demonstrating how community institutions can successfully manage sanitation infrastructure and service delivery. Transgender self-help groups have taken the lead in managing 8 sanitation treatment facilities, highlighting Odisha's effort to make sanitation systems more inclusive and socially equitable. Appreciating the efforts of Mission Shakti Initiative, Meghna Malhotra, Deputy Director of Urban Management Center, says,
Odisha Sarkar ne apne service delivery mein trans जेंडर्स के स्वयं सहायता समूह या जिन्हें SHG भी कहा जाता है उन्हें भागीदार बनाने के लिए दृढ़ प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए आज उड़ीसा के शहरों में स्थित फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो कई शहरों में ट्रांसजेंडर्स के SHGs द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। इससे इन SHGs को एक रिलायबल आजीविका के अवसर मिला है। मैं अगर सरल शब्दों में कहूँ तो ओडिशा यह दिखा रहा है कि सैनिटेशन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही नहीं है, यह लोगों के बारे में भी है। जब महिलाएं और ट्रांसजेंडर के समुदायों को अवसर, प्रशिक्षण और सम्मान मिलता है तो वे शहरों की जरूरी सेवाओं का नेतृत्व कर सकते हैं और उन्हें बेहतर बना सकते हैं।
दिस इनिशिएटिव इज नॉट ओनली इम्प्रूविंग सैनिटेशन सर्विसेज बट ऑल्सो क्रिएटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड, चैलेंजिंग लॉन्ग स्टैंडिंग जेंडर नॉर्म्स एंड फॉस्टरिंग इंक्लूजन बाई ब्रिंगिंग वुमेन एंड ट्रांसजेंडर कलेक्टिव्स इनटू द वर्कफोर्स विद क्लीनर नेबरहुड्स, इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटीज एंड कम्युनिटीज अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। द इम्पैक्ट ऑफ दिस एफर्ट्स इज visible across towns in Odisha. For Parikrama with Nirmalya Behera, this is Smriti Rekha Tarniya for Akashvani Katak.
अब ओडिशा से रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे अयोध्या, मथुरा और वृंदावन जाएंगी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में एयरपोर्ट से श्री राम मंदिर तक राष्ट्रपति के भव्य स्वागत की योजना बनाई गई है। अयोध्या की CDO कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि संस्कृति विभाग के प्रयास से एयरपोर्ट से श्री राम मंदिर गेट तक शहर की सड़कों पर करीब 20 सांस्कृतिक मंच सजाए जा रहे हैं, जहां लगभग 250 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या आगमन प्रातः 11 बजे प्रस्तावित है और लगभग 3 बजे वह वापस प्रस्थान करेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति श्री राम मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र का विधि विधान से पूजन करेंगी। अयोध्या के SSP गौरव ग्रोवर ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं मथुरा वृंदावन में राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए भव्य स्वागत के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मथुरा के SSP श्लोक कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के मथुरा वृंदावन के प्रस्तावित दौरे में विभिन्न मंदिर, आश्रम, हॉस्पिटल और गोवर्धन जी के परिक्रमा शामिल है। सभी पड़ावों पर SP रैंक के अधिकारी प्रभारी बनाए गए हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता।
And now from Uttar Pradesh to the state of Sikkim. Sikkimese film Shape of Momo bagged 2 major awards at the Spirit of Fire International Film Festival in Khanty Manisisk, Russia. We have more on this from our correspondent.
सिक्किम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्म निर्माता त्रिवेणी राय की नेपाली भाषा में बनी ये पहली फिल्म दुनिया भर के दर्शकों को सिक्किम और उसकी संस्कृति से जुड़ी एक अनोखी कहानी से रूबरू करा रही है। शेप ऑफ मोमो को सिल्वर टाइगर अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू फिल्म के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस फिल्म को सोल ऑफ रशिया वर्ल्ड सिनेमा स्पेशल प्राइज से भी नवाजा गया। मेरी राय ने इस उपलब्धि को सिक्किम को समर्पित किया और कहा कि राज्य 19 मार्च से अपने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। मैनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक से।
And now coming to the business news of the day, benchmark domestic equity indices closed 0.83% up today, supported by gains in technology and realty stocks. The Sensex climbed 633 points to close at 76,704, while the Nifty jumped 197 points to settle at 23,778. Earlier, the markets opened on a positive note and moved upwards with some volatility, but ultimately ended higher. Meanwhile, markets bounced back from the last week's sharp correction triggered by the West Asia conflict, marking their third consecutive session of profits.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
On the 18th of March 1919, the British government passed the Rowlatt Act, which gave powers to the police to arrest any person without any reason. The formal name of this legislation was Anarchy and Revolutionary Crimes Act of 1919.
The Act gave immense power to the colonial administration. Anyone suspected of nationalistic activities could be arrested for 2 years without a trial. The freedom fighters called the act the Black Act, and it triggered outrage across the nation. Gandhiji called for satyagraha against the Rowlatt Act on the 6th of April 1919. The British administration came down heavily upon the people, and on the 13th of April 1919, Jallianwala Bagh massacre took place in Amritsar.
The violence and bloodshed sparked by the Rowlatt Act drew Mahatma Gandhi into the vortex of the freedom movement, and he launched the non-cooperation movement in 1920, opening a new chapter in India's fight for freedom.
We also remember Indian National Army's Colonel Gurbaksh Singh Dhillon, who was born on the 18th of March 1914 near Amritsar, Punjab. Dhillon, along with other soldiers of the Indian National Army, General Shahnawaz Khan and Colonel Prem Kumar Sehgal, was charged with treason and waging war against the British Empire.
Dhillon joined the INA after the fall of Singapore to the Japanese in February 1942. When Netaji Subhash Chandra Bose took command of Azad Hind Fauj in 1944, Dhillon was made the commander of the Nehru Brigade. He was assigned the task of holding the Irrawaddy River in Burma. On 12th of February 1945, the INA defences along Irrawaddy were bombed by the Allied aircraft. Under severe bombardment and assault, the INA nevertheless managed to hold Irrawaddy. The other assault by the British opposite Nongju using motorboats was also repelled by the INA. However, INA could not hold for long in the face of sustained assault, and Dhillon had to eventually withdraw to Paghang.
Dhillon again was given the task of checking the Allied forces' advance to Chok Badaung. Dhillon and his soldiers offered the strongest resistance against the British attacks. However, in April 1945, under furious assault from the British tanks and armoured vehicles, INA had to withdraw to Maghve.
As the INA trials of Dhillon, Shahnawaz and Prem Sehgal started, the naval ratings mutiny broke out. The armed forces, which the British used to enforce their authority over India, turned against them. On January the 4th, 1946, Dhillon was released along with Shahnawaz and Prem Sehgal after a long trial. Post his release, Gurbaksh Singh Dhillon spent his life at Shivpuri in Madhya Pradesh, where he passed away peacefully on February the 6th, 2006. We salute the great nationalist.
We also remember freedom fighter Kunji Lal Dubey, who was born on the 18th of March 1896 in the Narsinghpur district of Madhya Pradesh. Kunji Lal was influenced by freedom fighters Madan Mohan Malviya and N.C. Kelkar when he was studying law in Allahabad University.
Kunji Lal became a member of All India Congress Committee in 1937 and was the secretary of the reception committee during the 1939 Tripuri session of the Congress. In 1941, he was selected for the satyagraha by Mahatma Gandhi, but was detained by the police and was sentenced to nearly 1 year of imprisonment. On his release in 1942, he participated in the Quit India movement and was jailed again, this time for a period of 2 years. In 1946, He was elected from Jabalpur in the assembly elections.
Post-independence, Kunjilal Dubey was actively involved in politics and was selected to be the first speaker of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh.
And today we also pay tribute to Akitam Achutan Nambutri, known as Akitam, who was an Indian poet and essayist who wrote in Malayalam. He was known for a simple and lucid style of writing, exploring themes of profound love and compassion in his works. Some of his prominent works included something in English, it was translated in English, an epic of the 20th century. And Akitam was the recipient of India's highest literary honor, the Gyanpith Award in 2019, and other awards including Padma Shri, the Sahitya Academy Award, Kerala Sahitya Academy Award for Poetry. Then there was a Vailar Award, Asan Prize, and ONV Literary Award as well. Today is his birth anniversary.
आज हम याद कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की बनारस घराने की परंपरा को अपनी भावपूर्ण आवाज से नई ऊंचाई देने वाली महान गायिका सिद्धेश्वरी देवी को। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे विशेष रूप से ठुमरी, दादरा, कजरी और चैती जैसे अर्धशास्त्रीय गायन शैलियों के लिए प्रसिद्ध थी। संगीत की दुनिया में उन्हें स्नेह और सम्मान के साथ ठुमरी की रानी भी कहा जाता था। उनकी स्मृति को नमन करते हुए सुनते हैं उनकी आवाज में प्रस्तुत ये सुंदर रचना।
रस से भरे तारे में, रस से भरे तारे में, एरिया सवलिया।
And today it's also the death anniversary of Rajkumari Dubey, known simply as Rajkumari, who was an Indian playback singer who graced the Hindi film industry with her melodious voice. She is best known for her songs in Bavri Nain, Mahal, in Pakiza, and many more. Rajkumari's journey into music started early at a tender age of 10 due to her family's musical background. Her father was a respected classical singer who recognized her talent and encouraged her to pursue singing. So we have selected a song in her voice from the movie Bavri Nain. After a period of struggle, Rajkumari caught the attention of music director Naushad as well while singing in the chorus for the background score of Pakiza. And Naushad, who admired her talent from her prime, was saddened to learn of her difficult circumstances. And in a gesture of support, he offered her a solo song in the movie, which we are going to play for you.
Najariya ki mari मरी मरी कुइया नजरिया की मारी मरी मरी बुइया नजरिया की मारी मरी मरी कुइया नजरिया की मारी मरी.
And today is also the birth anniversary of the Indian actor and producer whose career spanned more than 5 decades and who was known for his versatile acting prowess and charming screen presence. He was acclaimed for his work in mainstream Bollywood films as well as art house productions, besides being a thorough gentleman. Yes, I'm talking about Shashi Kapoor. He also earned praise for his performances in theatre and international cinema. In the 1960s and 70s, he popularized the gentle, elegant, romantic leads in commercial Hindi language movies. A memorable example is his role of Raja in Jab Jab Phool Khile, a role that solidified Kapoor's stardom.
एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और
वे केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की विरासत का अहम हिस्सा थे, जिनकी छवि आज भी उतनी ही जीवंत है। आइए शशि कपूर की आवाज में एक यादगार संवाद सुनते हैं।
कभी रस्ते में मिल जाओ तो कतरा कर गुजर जाना, हमें इस तरह तकना जैसे पहचाना नहीं तुमने। हमारा जिक्र जब आए तो यूं अनजान बन जाना
कि जैसे नाम सुनकर भी हमें जाना नहीं तुमने.
And this was his dialogue from the movie Kabhi Kabhi. And once he found his feet in the industry, Kapoor went on to star in countless movies, working so tirelessly that Raj Kapoor nicknamed him Taxi because he seemed to be constantly shuttling between film sets.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो वैष्णवी और अनुजा को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
नमस्कार.